इतिहास की दूसरी पुस्तक अध्याय 35। फसह उत्सव की पुनर्स्थापना। तब योशिया ने यरूशलेम में यहावे के लिए फसह उत्सव मनाया। पहले महीने के 14वें दिन उन्होंने फसह पशुओं का वध किया। उसने पुरोहितों को उनके पदों पर ठहराया और उन्हें यहावे के भवन संबंधी सेवा के लिए प्रोत्साहित भी किया। सारे इसराइल में शिक्षा देने के लिए ठहराए गए लेवियों को जो यहावे के लिए अलग किए हुए थे, राजा ने आदेश दिया। उस पवित्र संदूक को इसराइल के राजा दाविद के पुत्र शलोमोन द्वारा बनवाए यहावे के घर में प्रतिष्ठित कर दो। अब यह तुम्हारे कांधों के लिए बोझ नहीं रहेगा। अब आप लोग यहावे अपने परमेश्वर और उनकी प्रजा इसराइल की सेवा की ओर ध्यान लगाइए। स्वयं को अपने अपने विभागों में कुलों के अनुसार इसराइल के राजा दाविद और उनके पुत्र शलोमोन के लिखित निर्देशों के अनुसार इकट्ठा कर लीजिए। इसके अलावा पवित्र स्थान जनसाधारण के कुलों के भागों के अनुसार खड़े हो जाइए। लेवी भी कुलों के भागों के अनुसार खड़े हो जाइए। अब फसह के लिए ठहराए गए पशु वध किए जाए। स्वयं को शुद्ध कीजिए और अपने भाई बंधुओं को मोशे द्वारा सौंपे गए यहावे के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार कीजिए। खुद योशिया ने लोगों के लिए, जितने वहां उपस्थित थे, मेमनों का समूह और बकरी के बच्चे दान में दिए कि वे फसह के लिए इस्तेमाल हों। इनकी कुल संख्या हो गई थी 30,000 और 3,000 बछड़े। ये सभी राजा की संपत्ति से दिए गए थे। राजा के अधिकारियों ने भी लोगों, पुरोहितों और लेवियों के लिए अपनी इच्छा से दान दिया। परमेश्वर के भवन के अधिकारी हिल्किया, जखरिया और यहियेल ने पुरोहितों को फसह का बलिदान के लिए भेड़ों और बकरियों के 2,600 और 300 बछड़े दान में दिए। इनके अलावा लेवियों के अधिकारी केनानिया, नेथानेल, उसके भाई अशाबिया, यहियेल और योजाबाद ने फसह बलि के लिए लेवियों को 5,000 मेमने और 500 बछड़े दान में दिए। तब राजा के आदेश के अनुसार फसह की तैयारी पूरी हो गई। पुरोहित अपने निर्धारित स्थान पर खड़े थे और लेवी अपने विभागों के अनुसार। उन्होंने फसह के लिए ठहराए गए पशुओं का वध करना शुरू किया। पुरोहित उनके द्वारा इकट्ठा हुआ लहू लेकर छिड़काव कर रहे थे और लेवी पशु शवों की खाल उतार रहे थे। तब उन्होंने होमबलि को अलग रख दिया कि इन्हें लोगों में कुलों के अनुसार बांट दिया जाए कि वे इसे यहावे को पेश कर सके, जैसा मोशे की पुस्तक में लिखा है। तब उन्होंने फसह पशुओं को आग पर नियम के अनुसार भूना और पवित्र भेंटों को विभिन्न बर्तनों में उबाल लिया और जल्दी ही सभी लोगों को परोस दिया। इसके बाद उन्होंने अपने लिए और पुरोहितों के लिए भी तैयारी की, क्योंकि अहरोन के वंशज पुरोहित रात होने तक होमबलि और चर्बी चढ़ा रहे थे। इसलिए लेवियों को खुद अपने लिए और पुरोहितों के लिए, जो अहरोन के वंशज थे, तैयारी करनी पड़ी। दाविद, आसफ, हेमान और राजा के दर्शी यदूथून द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार आसफ के वंशज गायक भी अपने अपने ठहराए गए स्थानों पर खड़े हुए थे। द्वारपालों को द्वार छोड़कर जाना जरूरी नहीं था, क्योंकि आवश्यक तैयारी उनके भाई बंधु लेवियों ने उनके लिए पहले ही कर ली थी। तब उस दिन राजा योशिया के आदेश के अनुसार यहावे की आराधना के लिए फसह उत्सव मनाने और यहावे की वेदी पर होम बलि चढ़ाने के लिए सभी कुछ तैयार पाया गया। इस प्रकार इस अवसर पर वहां उपस्थित इसराइल वंशजों ने फसह उत्सव और खमीर रहित रोटी का उत्सव मनाया। भविष्यद्वक्ता शमूएल के समय से अब तक इसराइल में फसह उत्सव का ऐसा समारोह नहीं मनाया गया था, और ना ही इसराइल के किसी भी राजा ने पुरोहितों, लेवियों, सारे यहूदिया, उपस्थित इसराइल और यरूशलेम वासियों के साथ इस तरह का समारोह कभी नहीं मनाया था जैसे योशिया ने मनाया था। यह फसह का उत्सव योशिया के शासनकाल के 18वें साल में मनाया गया था। रणभूमि में योशिया की मृत्यु। फिर यह सब होने के बाद जब योशिया मंदिर में सब कुछ तैयार कर चुका, युद्ध की इच्छा से मिस्र का राजा नेको फरात नदी के तट पर कर्कमीश नामक स्थान तक आ गया। योशिया भी उसका सामना करने वहां पहुंचा, मगर नेको ने उसके लिए इस संदेश के साथ दूत भेजे, यहूदिया के राजा, आपसे मेरी कोई शत्रुता नहीं है, इस समय मैं आपसे युद्ध करने यहां नहीं आया हूं, बल्कि मैं उस परिवार के विरुद्ध आया हूं जिससे मेरा विवाद है, और परमेश्वर ने ही मुझे पूर्ति का आदेश दिया है। अपने ही हित में आप परमेश्वर के इस काम से अलग रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वह आपको नाश करे, क्योंकि परमेश्वर यहां मेरी ओर है। फिर भी योशिया ने उसकी एक न सुनी, बल्कि उससे युद्ध करने के उद्देश्य से उसने भेष बदल लिया कि वह उससे युद्ध कर सके। वह नेको के द्वारा दिए परमेश्वर के संदेश को ठुकराकर उससे युद्ध करने के उद्देश्य से मगीदो के मैदान में आ गया। राजा योशिया मिस्त्री धनुर्धारी के बाणों का निशाना हो गया। राजा ने अपने सेवक को आदेश दिया, मुझे यहां से ले चलो, मुझे गहरी चोट लगी है। तब उसके सेवकों ने उसे उस रथ से निकालकर उसके ही एक दूसरे रथ में बैठा दिया और उसे यरूशलेम ले गए, जहां उसकी मृत्यु हो गई। उसे उसके पूर्वजों की कब्र में रखा गया। योशिया के लिए सारे यहूदिया और यरूशलेम ने विलाप किया। योशिया के शोक में यिर्मयाह ने एक विलाप गीत प्रस्तुत किया। आज भी पुरुष और स्त्री गायक अपने शोक गीत में योशिया का उल्लेख करते हैं। इसराइल में इसे गाने की रीति हो गई है, इसे विलाप गीत की पुस्तक में शामिल किया गया है। योशिया के बाकी कामों का वर्णन और यहावे की व्यवस्था के प्रति उसके पहले के समर्पण द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन, शुरू से अंत तक उसके सभी कामों का वर्णन इसराइल और यहूदिया के राजा नामक पुस्तक में किया गया है।